ओम शांति। कुछ पलों के लिए इस आवाजों के संसार से चलिए डिटैच हो जाएं, आसपास की हलचल से, इस साकारी दुनिया के विचारों से अपने मन को समेट लें। इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। और महसूस करें मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ वाइट स्पार्कलिंग स्टार, सेल्फ ल्यूमिनस डिवाइन लाइट। इस अवेयरनेस में आ जाएं। मैं आत्मा, इस शरीर का संचालन कर रही हूं, इस शरीर से कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता हूं। बहुत क्लियर इस फीलिंग में आ जाएं। एंड फील द डिफरेंस। मैं एक एनर्जी हूं। आज तक अपने को शरीर समझती आई, लेकिन अब इस फीलिंग में आ जाएं। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल स्टार एनर्जी, अ बीइंग ऑफ लाइट, डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, master of this body. दिन भर इस शरीर से बहुत से रोल्स मैं प्ले करती हूं, कभी फादर का, कभी सन का, कभी कोलीग का। इन सब रोल्स को प्ले करते हुए मेरी मन की स्थिति साथ साथ चेंज होती गई, लेकिन अब इस अवेयरनेस के साथ मैं रोल्स प्ले करूंगी कि मैं एक पीसफुल एनर्जी हूं, एक लवफुल बीइंग हूं। रोल भले चेंज हो, लेकिन मेरे मन की स्थिति ना चेंज हो। तो फोकस अब बाहर से अंदर की ओर ले आए, अपनी ओर ले आए, अपने मन की स्थिति की ओर, और उसे संभाल कर कर्म करने का आज शुभ संकल्प लें। अपने आप से वायदा करें, दिन भर जो भी कर्म करेंगे इसी स्थिति को बनाए रख के करेंगे। शांति। ओम शांति। इस सभा में आप एक एक को यहाँ पर उपस्थित उन्नत ललाट हर्षित मुख के साथ देख करके मुझे मूर्तिकार याद आ रहे हैं। कोई भी मूर्तिकार जिसे मूर्ति बनानी होती है वो पत्थर को सिलेक्ट करता है, क्योंकि हर पत्थर से मूर्ति नहीं बन जाती। कई पत्थर ऐसे होते हैं उन पर हथौड़ा लगाओ तो मिट्टी का ढेर हो जाता है, तो क्या मूर्ति तैयार होगी। पर कई पत्थर ऐसे होते हैं जिसे मूर्तिकार सिलेक्ट करता है और उसे पता है इस पर अगर मेहनत की जाए तो इससे मूर्ति तैयार होगी। तो मैं समझती हूं कि परमात्मा परम मूर्तिकार है और उस परम मूर्तिकार ने आप एक एक को इस कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट किया है। आप सबको महसूस हो रहा है जैसे दुनिया में इलेक्शन होती है, यहां सिलेक्शन होती है। हमने निमंत्रण तो बहुतों को दिया था लेकिन परमात्मा उस परम मूर्तिकार ने आप एक एक को इस कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले तो आप एक एक के उज्जवल भाग्य का मैं आपको अभिनंदन करना चाहूंगी। तो आज का विषय बहन ने दिया है परमात्मा का परिचय। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप सब भगवान को मानते हैं? जो मानते हैं वो हाथ उठाए। ठीक, जो नहीं मानते वो हाथ उठाए। आज से कुछ साल पहले जो लोग यहां पर आते थे तो भगवान की तलाश के लिए आते थे, लेकिन आजकल जो आते हैं उनके मन में कोई बहुत तलाश अंदर में परिचय पाने की, भगवान को पाने की इतनी नहीं रहती है। लेकिन किसको तलाश रहे होते हैं? किसको? हाँ, खुद को तलाशने वाले भी होते हैं, परमात्मा को तलाशने वाले भी कम हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल जो तलाश है लोगों में वो है शांति की, प्यार की, खुशी की, संतुष्टता की, और इस तलाश में आते हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे आजकल जो हम फोन्स यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल फोन्स, अगर हम उनको चार्ज ना करें और केवल यूज करते रहें तो थोड़े समय में डब्बा बन के रह जाएगा। चार्जिंग बहुत जरूरी है और चार्जिंग के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं कहूं कि परमात्मा का परिचय, वो कहां रहता, क्या करता, उससे कनेक्ट होना, इन विधियों को एक बाजू करें, मुझे शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सब पाने के लिए जैसे मोबाइल, बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें हैं, बहुत सारी आजकल काम मोबाइल करता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए, उस बेनिफिट को लेने के लिए उसकी चार्जिंग, उससे पावर हाउस से कनेक्ट होना मस्ट है। बिल्कुल इसी तरह से उस परमात्मा पिता का परिचय भी उससे कनेक्ट होने से पहले जरूरी है, ताकि हम कनेक्ट हों और फिर शांति, खुशी, आनंद, प्यार भरी जिंदगी जी सकें। हम यहाँ योग सीखने आए हैं, तो किसका योग किससे? आत्मा का योग परमात्मा के साथ है। वो योग सीखें उससे पहले दोनों एंड्स का पूरा परिचय होना बहुत आवश्यक है। बिफोर द टू एंड्स मीट वी गॉट टू हैव द फुल नॉलेज अबाउट द टू एंड्स। सो सुबह में खुद का परिचय पाया, अभी खुदा का परिचय। पहले आपका परिचय पाया, अभी बाप का परिचय, परमात्मा का परिचय। क्योंकि एक मन में अंदर सबके कंप्लेन्स ही रहती है कि ये मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता है। चाहते तो हम बहुत हैं, ऐसे देहधारी मनुष्यों को सहज याद कर पाते हैं, लेकिन परमात्मा को जब याद करने बैठते हैं, बाकायदा समय निकाल करके बैठते हैं, फ्रेश होकर के बैठते हैं, स्थान मुकर्रर घर में किया है उसकी याद के लिए, तो भी जब बैठते हैं याद में तो एक जनरल सबकी कंप्लेन है कि मन क्या भागता है। वैसे योग भी ना कहकर के चलिए इसको याद कहें कि आत्मा को परमात्मा को याद करना है, और हम सबको याद करने का तो बहुत अच्छा अभ्यास है ना, है कि नहीं? बचपन में हम सबको चलना सिखाया गया था, बोलना सिखाया गया था, पढ़ना लिखना सिखाया गया था, किसी को याद करना सिखाया गया था? नहीं ना। याद करना हमारी बेसिक नेचर है, सिखाना नहीं पड़ता है, तो भी हमको परमात्मा को याद करने में मेहनत क्यों होती है? क्यों भाई? और सबको तो याद कर पाते हैं, परमात्मा को याद करने की तकलीफ क्यों है? क्योंकि उसका पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि उसको पूरा जानते नहीं है। और इसीलिए आज के इस विषय की जरूरत है, जिससे योग सरल हो जाएगा, मेडिटेशन इजी हो जाएगा। तो मेडिटेशन थ्री वे प्रोसेस है, इनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। खुद से कनेक्ट होना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद के विचारों का ध्यान, ताकि वो हर समय बदलती परिस्थितियों में भी स्टेबल रह सकें, पॉजिटिव रह सकें, मेरी इनर स्टेट लवफुल रहे, ये है खुद का ध्यान रखना। हम परमात्मा का ध्यान करना सीखें, उससे पहले जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखना सीखें। तो एक है ध्यान रखना, दूसरा है ध्यान करना, और जब उसका ध्यान करने की कला सीख जाते हैं, फिर उसका असर शरीर पर, संबंधों पर, वातावरण पर, सब तरफ होता है। तो हम आज उस परमात्मा पिता का सत्य परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या लगता है, भगवान करते क्या हैं? जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सब वही कर रहा है, कहते पत्ते पत्ते को हिलाने वाला परमात्मा है, बारिश आई भगवान ने कराई, पत्ता हिला भगवान ने हिलाया, समझते हैं सब कुछ भगवान कर रहा है, सब ऊपर वाले की लीला है, ऐसे कहते हैं। थोड़ा विचारें, जो इतनी दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है, ये भगवान कर रहा है? भगवान के ये कर्तव्य हैं? भगवान को इसके लिए दोषी ठहराना ठीक है? जो इतना दुख बढ़ रहा है, भगवान दुख दे रहा है, भगवान कर सकता है? विचारें जरा, अगर ये बुराई जो चारों तरफ बढ़ती जा रही है, टेररिज्म है, गैंग रेप है, बहुत से न्यूज में किस्से हम सुनते हैं, अगर भगवान ये सब बुराई करा रहा है तो फिर बुरे का बुरा फल किसको भोगना चाहिए? फिर तो वो भोगे ना, हम क्यों भोगे? अगर परमात्मा दुख दे रहा है तो फिर तो दुख में हमें याद किसको करना चाहिए? किसी और को करना चाहिए। जो दुख दे रहा है उसी को थोड़ी दुख में याद करेंगे। जरूर वो दुख नहीं दे रहा तब तो हम उसको दुख में याद करते हैं। तो लगता है चलो दुख नहीं देता, बुराई नहीं कराता, परमात्मा सुख तो देता होगा, ठीक है भाई, सुख तो देता है कि नहीं? क्या लगता है, सुख तो देता है? थोड़ा विचारें, अगर भगवान सुख देता हो तो फिर तो वो सबको समान सुख देगा ना, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसे देगा? यानी हम ये समझ रहे हैं कि जो हमें सुख या दुख मिल रहा है ये किस आधार से मिल रहा है, किस आधार से? अपने कर्मों के आधार से। अपने कर्मों के आधार से हम सुख या दुख भोग रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भगवान करता क्या है? भगवान अगर ये नहीं करता तो फिर वो क्या करता है, कौन है, कहाँ रहता है? इस विषय में हम आगे जाएं उससे पहले आज तक जो हमने पढ़ा है, सुना है, जो हमारी मान्यताएं हैं, थोड़ा उसको बाजू में रख करके एक खुले मन से विचारें। आपको क्या लगता है भगवान कैसा होगा, कैसी उसकी नेचर होगी, कैसा होगा उसकी नेचर, कैसी होगी उसका स्वभाव, कैसा होगा, कैसा होगा? कहिए। लवफुल, पीसफुल। वो तो हम भी हैं, तो हम में और उसमें फर्क क्या रहा? शांति हमारा भी निज गुण है, तो परमात्मा शांति का सागर है, वो कंपैशनेट है, वो लविंग होगा। आप विचारें भगवान कैसा होगा, रहम दिल होगा, कृपालु होगा, कल्याणकारी होगा। कोई कितना भी बुरा विचार करे वो उसके प्रति भी क्षमाशील होगा। तो जो मन में परमात्मा के लिए अभी भाव हमारे आ रहे हैं ये उसके गुण हैं, और इन गुणों में वो सागर है। परमात्मा के गुणों की तुलना सदैव सागर से की जाती है, नदी से नहीं। फलानी फलानी नदी सूख गई ऐसा आपने सुना होगा, फलाना फलाना सागर सूख गया ऐसा कभी आपने सुना है? सागर अपने आप में विशाल है, ऐसे परमात्मा के गुण भी अपने आप में अनंत हैं, बेशुमार हैं, विशाल है। इसीलिए उसके गुणों की तुलना बार बार सागर से की जाती है। तो वो गुणों का भंडारी, वो शक्तियों का सागर, वो ज्ञान का सागर है, यही वो है। आप सोचिए, आप सागर के पास जाएं तो क्या फील होगा? ठंडी हवाएं, वो पानी शीतलता प्रदान करता है, और जहां पानी अनंत बह रहा है तो वो शीतलता की फीलिंग आती है, मांगनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद आती है। ऐसे जब परमात्मा के समीप मैं आत्मा जाती हूं तो परमात्मा अगर शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो जैसे ही मैं आत्मा उसके समीप जाती हूं तो उस शांति की, उस प्यार की, उस शक्ति की आत्मा को फीलिंग आती है। अब कैसे उस परमात्मा पिता में मन को कनेक्ट करें? तो उसके निमित्त आज उस परमात्मा पिता का स्वरूप, उसके गुण हम जानेंगे। उससे पहले कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एक फीचर्स मैं परमात्मा के आप सबके समक्ष रखती हूं, क्योंकि आजकल क्या है, नित नए भगवान निकलते आ रहे हैं। कल उठ के कोई पड़ोसी आपको कहे अब मैं भगवान हूं, तो मेरे बुद्धि में क्लियर हो कि आखिर परमात्मा के क्या लक्षण है। तो जैसे सबसे पहली बात अभी हमने चर्चा की कि वो गुणों में अनंत है, हद लिमिटेड नहीं है। यानी अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, और अगर परमात्मा शांति का सागर है तो वो सदा है, सदा रहेगा, उसकी अपरिवर्तनशील स्थिति है, एकरस स्थिति है। तो हम सब में ऐसे कोई है? तो परमात्मा हम उसे कहेंगे सबसे पहली बात जिसकी स्थिति अपरिवर्तनशील हो। और यही कारण है कि हम योगियों के जो लक्षण गाते हैं, जिन्होंने परमात्मा के साथ योग लगाया, कहते हैं योगी वो जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय पराजय, हार जीत सब में समान रहे, क्योंकि जिसके साथ उसका योग है उसकी स्थिति स्टेबल है। तो जो योग लगाता है उसकी स्थिति भी कैसी हो जाती है? स्टेबल, एकरस हो जाती है। तो सबसे पहला परमात्मा का लक्षण अपरिवर्तनशील उसकी स्थिति। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा फीचर, परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, जिससे ऊंचा दुनिया में और कोई ना हो, जिसके कोई माता पिता ना हो, जो आगे किसी की पूजा आराधना ना करता हो, स्वयं सर्वोच्च हो, उसे परमात्मा कहेंगे। तीसरा, परमात्मा वो जो मुक्त हो, कोई प्रकार के बंधन में बंधा हुआ ना हो, जैसे आजकल हमारी स्थिति है, हम जन्म बंधन, कर्म बंधन, देह के बंधन में बंधे हुए हैं। हम अक्षर ही देखो क्या यूज करते हैं, कर्म बंधन। यानी परमात्मा बंधनों से मुक्त हो, देहधारी न हो, शरीरधारी न हो, आत्मा हदों में बंधी हुई है, लिमिट्स में है। चौथा, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, यानी जिसे सब धर्मों की आत्माएं जाने या अनजाने में मानती हूं, क्योंकि वो सबका पिता है, तो सब धर्म वाले उसे जाने अनजाने में स्वीकारते हूं। और पांचवी बात, परमात्मा वो जो दाता हो, देने वाला हो, एवर डोनर हो। इन बातों को सामने रखते हुए उस परमात्मा पिता के बारे में परिचय जो आपके आगे रख रहे हैं, ये वो परिचय है जो उन्होंने खुद दिया है। जैसे आपका परिचय, अगर मदर है, फादर है, आपके कोई कुलीग हैं या आपका कोई फ्रेंड है, ऐसे चार जनों को अगर आपका परिचय देने के लिए कहा जाए, मदर, आपके फादर, आपका फ्रेंड और आपका कोलीग, चार जनों को आपका परिचय देने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या लगता है, सब सेम परिचय देंगे या अलग अलग देंगे? अलग अलग देंगे। उसमें से कौन, किसका परिचय गलत होगा? किसी का गलत होगा, किसी का भी नहीं। यानी जो भी परिचय देगा वो अपने अनुभव के आधार से, उसका आपके साथ जो रिश्ता है उसके आधार से आपका परिचय देगा। लेकिन फिर भी आपका एक्यूरेट परिचय कौन दे सकता है? कौन? आप खुद। आप खुद। बिल्कुल उसी तरह से परमात्मा का परिचय भी परमात्मा खुद ही एक्यूरेट दे सकता है। तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है जो उसने अपना परिचय दिया। आज हमने सुबह में जाना कि हम ये देह नहीं है, लेकिन इस देह को चलाने वाली एक स्पार्कलिंग स्टार है, आत्माएं हैं। तो जो आत्मा का पिता होगा वो कैसा होगा? वो भी एक चमकता हुआ सितारा होगा ना? और परमात्मा का ये ज्योति स्वरूप सर्वधर्म मान्य है, यानी सब धर्मों की आत्माएं उसके ज्योति स्वरूप को स्वीकारती हैं, मानती हैं। देखिए, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक ओंकार है, एक निराकार है, वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव जी को तपस्या करता हुआ दिखाया है। ये और बात है कि हम गुरु नानक देव जी तक ही सीमित रह गए, लेकिन उन्होंने इशारा किसकी ओर किया? एक ओंकार की तरफ। ओंकार माना निराकार, ज्योति स्वरूप। मुसलमान भाई ऐसे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मक्का में जाते हैं तो मक्का में दीवार पर एक गोल काला प्रकाश के आकार का पत्थर गड़ा हुआ है, और जब तक उसे दूर से चूम न लें तब तक अपनी हज पूरी नहीं समझते। जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल में कहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड बट गॉड इज लाइट, गॉड इज स्पिरिट। उनके जब ही उनको क्रूसीफाई किया गया, उनको जब क्रॉस पे चढ़ाया गया, तो जिन लोगों ने उनके हाथ में पांव में कील ठोके, जीसस क्राइस्ट ने उस बाइबल में कहा है, भगवान आप इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो बहुत से स्थान पर बाइबल में ये बात आती है, परमात्मा स्पिरिट है, परमात्मा लाइट है, और मैं उसका भेजा हुआ पैगंबर हूं, संतान। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जी, शंकराचार्य जी, इन सब के जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो उन सबको तपस्वी स्वरूप में दिखाया है। वो तपस्वी स्वरूप बताता है कि सब किसी शक्ति से ध्यान लगा रहे हैं, कोई सत्ता है जिसमें मन को एकाग्र कर रहे हैं। और इन सब की जीवन कहानी जब संतों की हम पढ़ते हैं तो बहुत स्थानों पर ये बात आती है कि हम उन्हें प्रकाश का साक्षात्कार किया। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन परमात्मा उन गुणों में सागर है। इसीलिए एक एक गुण की तुलना सागर से की गई, शांति का सागर, प्यार का सागर, शक्तियों का वो भंडार है। और एक एक गुण को आप ध्यान से देखें तो हर गुण में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। अगर वो हमें शांति प्रदान करते हैं उससे हमारा कल्याण होता है, अगर वो हमें शक्ति देते हैं उससे हमारा कल्याण होता है। आप एक संस्कृत की डिक्शनरी उठाएं और उसमें एक संस्कृत अक्षर शिव का अर्थ देखें तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। वो हमारा अकल्याण कर नहीं सकता, तो गुणों के आधार से उनका नाम शिव पड़ता है। कर्तव्यों के आधार से उनका नाम शिव है, तो वो ज्योति स्वरूप, उसको मैं संकेत कर रही हूं। आज तक जो हमने शिव का चित्र देखा, या तो शिव लिंग के रूप में देखा या शिव शंकर के रूप में, तपस्वी स्वरूप में देखा, ये निराकार स्वरूप में तो हमने कभी शिव को जाना ही नहीं। आप देखिए, शंकर जी को तपस्वी स्वरूप में दिखाया है, उनका तपस्वी स्वरूप बता रहा है कि वो किसी शक्ति से ध्यान लगा रहे हैं। वो महान आत्मा है, देव आत्मा है, लेकिन परमात्मा को याद कर रहे हैं। आज भारत भर में जहां जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अब देखेंगे नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में जाएं तो अमरनाथ, साउथ में जाएं तो रामेश्वर, भारत में वेस्ट में जाएं तो सोमनाथ, ईस्ट में जाएं तो पशुपतिनाथ, जहां तहां भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम उन्हें शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। जब जब भी शिवरात्रि आती है, अगर शिव और शंकर एक होते तो हम उसे शंकर रात्रि भी कह सकते थे। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, लाइट है, मुझ आत्मा का पिता है, पर मुझे अगर उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करने हैं, अपने रिगार्ड्स व्यक्त करने हैं, जल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, आराधना करनी है, तो उस बिंदी की भला कैसे आराधना करें? तो हमने क्या किया भक्ति में, उस बिंदी की पिंडी बना दी। किस लिए? पूजा के लिए, आराधना के लिए, अपने सम्मान व्यक्त करने के लिए। और इसीलिए इस शिवलिंग में वो बीच में बिंदी दिखाते हैं, उसी ज्योति स्वरूप का ये यादगार चिन्ह है। पर आप जब से यहां आए हैं, यहां तो आप वो पिंडी भी नहीं देख रहे, यहां तो बिंदी ही दिखाई दे रही है। देखिए, एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक पिता के लिए बहुत सी पार्टीज होस्ट करता है, बहुत से महिमा के पुल बांधता है। पिता को बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन पिता जो कहता है ना वो मानता नहीं है। एक और बच्चा है, पिता के लिए पार्टीज होस्ट नहीं कर रहा है, फूल मालाएं नहीं चढ़ा रहा है, पर बड़ा आज्ञाकारी है। आपको क्या लगता है पिता का ज्यादा प्यार किस बच्चे के प्रति होगा, जो पार्टी होस्ट कर रहा है, जो महिमा के पुल बांध रहा है, जो फूल मालाएं चढ़ा रहा है, पिता को ज्यादा प्यारा कौन होगा? वही जो आज्ञाकारी है। हम यहां इस विद्यालय में विशेष परमात्मा की आज्ञाओं पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं। आज हम सभी भक्ति मार्ग में हमने तीर्थ यात्राएं की, जप किए, तप किए, आरती उतारी, जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, क्या क्या विधियां की हम सब ने, बड़ी भावना से की और जरूरी भी थी, लेकिन आज्ञा मानी नहीं। रूप निराकार का बिंदी से पिंडी का इसलिए बनाया था कि हम अपने रिगार्ड व्यक्त कर सकें, लेकिन परमात्मा कहते बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं उसी रूप में तुम मुझे याद करके मेरी आज्ञाओं पर चलो, क्योंकि आज्ञा मानना बड़े से बड़ी पूजा है। और उसकी आज्ञा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का त्याग करो। तो विशेष इस विद्यालय में हम वो जो है जैसा है उसी रूप में उसको याद कर उसकी आज्ञाओं पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, उसी निराकार स्वरूप में उसको याद कर लक्ष्य रहता है कि उसकी आज्ञाओं पर चलें, अपने जीवन को निर्विकारी बनाएं। अब सवाल उठता है कि वो भगवान जिसकी याद से मेरे पाप कटेंगे उसका ध्यान कहाँ लगाएं, वो रहता कहाँ है, कहाँ रहता होगा? कई कहते हैं मन में रहता है, दिल में रहता है, कई कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सब जगह है। अभी आप विचारें भगवान रहता कहां होगा, क्योंकि हम योग सीखने आए हैं, तो जहां वो रहता है मुझे अपना ध्यान वहां ले जाना होगा। तो कहां रहता है वो? आज तक हमने उसको सर्वव्यापी कहा, ठीक है ना? भगवान सब जगह है, यही हम आज तक समझते आए। तो जिन लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी कहा दो कारणों से कहा, एक भावना और दूसरा भय। पहला भावना, जैसे मीरा को चहुं और कृष्ण नजर आता था और वो गाती थी प्यार में कि जिधर देखती हूं उधर गिरधर गोपाल, और किसी को नहीं नजर आया, मीरा को ही नजर आया, क्योंकि मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भावना थी। जैसे नहीं बच्चा मां से बिछड़ करके पहली बार समझो दिल्ली गया, माँ यहाँ है, वो पहली बार बच्चे से बिछड़ी है, उसको बच्चे की आवाज सुनाई देती है, माँ हलवा बना ना। माँ दौड़ी दौड़ी किचन में जाती है हलवा बनाने। आसपास वाले लोग कहते हैं क्या हो गया है, ठीक तो है? वो कहती नहीं, मैंने आवाज सुनी, माँ कोई सुनाई दे रही है और किसी को नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति भावना है। वो जैसे लवर बिलवेड होते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका। अभी प्रेमिका दुबई में रहती है, प्रेमी यहां है। वो फोन करता है प्रेमिका को दुबई में और कहता है तू मेरी आंखों में समाई हुई है, तू मेरे मन में समाई हुई है, तू मेरे दिल में समाई हुई। फोन पे कह रहे हैं तू मेरे रोम रोम में समाई हुई है। तो प्रेमिका कहां है? आंखों में, दिल में, मन में, रोम रोम में। मुझे अगर मिलना है प्रेमिका को तो प्रेमिका कहां है? कहां? दुबई में है। तो यहां क्या है? यहां क्या है? यहां भावना है। बिल्कुल इसी तरह से बड़े दिल से प्यार से जब भक्तों ने भगवान को याद किया तो उसके साथ का अनुभव यहां हुआ और मन गा उठा कि वो यही है। एक एक को उसके साथ का अनुभव हुआ तो भावनावश हमने कहा वो यहां है। और दूसरा भय के कारण भी। देखना भगवान सब जगह है, पाप कर्म नहीं करना, वो देख रहा है। तो हम पाप कर्मों से बचे रहे उसके लिए हमने कहा कि भगवान सब जगह है। बाकी तो जो भगवान में नहीं भी विश्वास करते हैं ना, वो भी इशारा सही करते हैं, कहते मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। कहां करते हैं इशारा? इशारा सही करते हैं ऊपर की ओर। कोई बात नहीं पता होती है ना तो कहते मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। अरे अगर भगवान दाएं में होता बाएं में होता तो ऐसे भी तो कह सकते थे, मैं क्या जानूं, दाएं वाला जाने बाएं वाला जाने। ऐसे नहीं कहते हम। क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, यानी कहीं ऊपर में रहता है। और कहावत तो ऐसी भी है, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। धाम माना निवास स्थान, वो भी कहीं ऊपर में है। तो किधर है? इस सूर्य चांद तारागण से पार, जहां तक साइंस पहुंची है, जो यूनिवर्स जिसकी हमें नॉलेज है, ये गैलेक्सी, इस सब से पार सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, गोल्डन रेड रीजन है जिसे परमधाम कहते हैं। परे ते परे वो धाम है, जहां परमात्मा वास करते हैं, जो हम आत्माओं का भी मूल निवास स्थान है, परमधाम। हम आत्माएं वहीं से ही सृष्टि पर आई हैं, पार्ट बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए। कब आई, कब तक पार्ट बजाएंगी, कब जाना है या नहीं जाना है, इस विषय को बाद में लेंगे, लेकिन आज केवल इतना कि परमात्मा परम धाम का वासी है और वो हम आत्माओं का भी मूल घर है। यानी जब हम अब उसको याद करें तो बुद्धि को इस आवाजों की दुनिया से, इस हलचल के संसार से डिस्कनेक्ट करके उस ओर ले जाएं, सूर्य चांद तारागण से पार, गोल्डन रेड रीजन में वो महाज्योति, वो पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, वो सुप्रीम लाइट वास करती है। और हम उसको केवल शिव न कह करके शिव बाबा कहते हैं। यहाँ पर हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते ही रिश्ता, रिलेशनशिप याद आती है। आज तक हम सब ने सारे रिश्ते गाए, जोड़े नहीं। आप कहेंगे बहन जी आप कैसे कह सकते हैं कि जोड़े नहीं और केवल गाए। देखिए मैं प्रूफ देती हूं। एक बच्चा है जिसकी, जिसके पापा की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितनी? 20 करोड़। वो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से वो पिता की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार है, लीगली हकदार है। पड़ोसी का बच्चा बहुत ईमानदार है, तो पिता अपनी प्रॉपर्टी पड़ोसी के बच्चे के नाम कर देगा? कर देगा? पड़ोसी के बच्चे को मांगना पड़ेगा, लेकिन पिता को, पिता की सारी प्रॉपर्टी का बच्चा पूरा हकदार है, उसको मांगना नहीं पड़ता। आज हम पूजा करने बैठते हैं और मांगना शुरू, हे परमात्मा शांति दे। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं ना, शक्ति दे। एक मर्सिडीज घर के आगे खड़ी कर दे, बच्चे को एग्जाम में पास कर दे। ये क्या करते हैं? हम मांगते हैं। हमारा मांगना सिद्ध करता है कि हमने परमात्मा से रिश्ता जोड़ा नहीं है, क्योंकि जहां रिश्ता है वहां सबसे पहले मांगना समाप्त हो जाता है, वहां अधिकार है। यानी अगर परमात्मा शांति का सागर है और वो मेरा है, जिस पल ये फीलिंग आती है उस पल शांति का संचार आरंभ हो जाता है। प्यार का सागर मेरा है ये फीलिंग आती है तो दर दर प्यार मांगने का संस्कार समाप्त हो जाता है। आज हम दुनिया में एक दूसरे से प्यार, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि हमने परमात्मा से प्यार का रिश्ता जोड़ा नहीं है। गाए हैं, सारे रिश्ते गाए हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। गाए सारे संबंध पर जोड़े नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, पापा की खड़ी कार में, कार जो खड़ी है उसमें सीट पर बैठ करके स्टीयरिंग हिला रहा है, और मैं उस बच्चे को पूछती हूं, बेटा कार किसकी है? तो वो बच्चा तुरंत कहता है मेरी है। मैं कहती हूं नहीं नहीं पापा की है। वो बच्चा क्या कहता है? नहीं मेरी है। उसको पता है पापा मेरा है, तो जो कुछ पापा का है वो किसका है? मेरा है। ऐसे परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, विधाता है, वरदाता है, शांति का सागर है, उससे हमें वर मांगने की, शांति मांगने की, भाग्य मांगने की दरकार है? केवल उससे रिश्ता जोड़ना है, रिश्ता। और रिश्ता कैसे जुटता है? हस्बैंड वाइफ का भी आपस में केवल कहलाने लगे हस्बैंड वाइफ तो रिश्ता जुट जाता है। कैसे रिश्ता जुटता है? हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हम एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स का पता चलता है, अपने सारे डिसीजंस उनके साथ पहले शेयर करते हैं। धीरे धीरे जब संबंधों में लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, तो एक समय आता है कि बहुत रिश्ते की मजबूत फाउंडेशन तैयार हो जाती है। और फिर कोई हस्बैंड की फोटो सामने रखती पड़ती है तभी उसकी याद आएगी, अरे जहां रिश्ता है वहां तो याद सहज आती है, वहां आंख बंद करनी पड़ती है भला। ऐसे परमात्मा को बड़े प्यार से याद किया जा सकता है खुली आंखों में। केवल जरूरत है कि हम उससे गहरा रिश्ता जोड़ें, समीप का रिश्ता जोड़ें और परमात्मा के साथ दिल की बातें करें। और इसीलिए हम यहां पर केवल शिव न कह करके शिव बाबा कहते हैं, वो रिश्ते की स्मृति आती है। परमात्मा के साथ बातचीत वर्बल लेवल पर नहीं है, मौखिक लेवल पर नहीं है, ये तो ऐसा है कि जैसे टेलीपैथी होती है ना। टेलीपैथी क्या होती है? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। नहीं, बच्चा बात कर रहे थे, वो दिल्ली में है, अभी हम बात कर रहे थे ना, माँ यहां पर है, माँ बच्चे को फोन लगाती है, उससे पहले बच्चे को वहां फील हो रहा होता है कि माँ मुझे याद कर रही है। ये क्या है? टेलीपैथी। आप सबने भी अनुभव किया होगा, एक वाइब्रेशन का रिश्ता है हमारा परमात्मा के साथ, संकल्पों का रिश्ता है, हम सोचते हैं उसे पहुंचता है। अगर ये आत्मा का आत्मा के साथ पॉसिबल है तो क्या आत्मा का परमात्मा के साथ पॉसिबल नहीं है? आप किसी को कहते हैं जो आपको मिलता है, वाह बहुत बढ़िया ड्रेस पहन कर आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, अंदर में आप सोचते हो ये भी कोई ड्रेस है, ये भी कोई कलर है, इनको कलर भी चूज करना नहीं आता। हम मुख से बोल रहे हैं बहुत अच्छी ड्रेस है, अंदर सोच रहे हैं क्या ड्रेस है। वो संकल्प पहुंचता है या नहीं पहुंचता? हमको लग रहा है मैंने तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन सामने वाले को संकल्प पहले पहुंचेगा या बोल? वाइब्रेशंस पहुंचती है ना। आप किसी के घर गए और वो सामने से आपको बोल रहे हैं वाह वेलकम, बहुत खुशी हुई आपको देख करके, और आपको कहीं ऐसे अंदर में फील हो रहा है कि भले ये कह रहे हैं लेकिन इनको खुशी हुई नहीं है। तो जब आत्माओं का आपस में संकल्पों के साथ ये रिश्ता है, वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, तो परमात्मा से नहीं पहुंचती, जबकि वो शांति का, प्यार का अनंत सागर है। तो केवल जरूरत है कि मैं उससे सच्चा रहूं, मैं उसके साथ बातें करूं, मैं उसके साथ समय बिताऊं और जैसा वो है निराकार ऐसे देहभान भूलकर मैं भी उस स्वरूप में स्थित होकर जब उसको याद करूंगा तो जरूर उसकी टचिंग्स को कैच कर सकूंगा। तो आप सब चाहेंगे इसी समय हम उसका अभ्यास करें, जब तक दादी जी हमारे बीच में आए, चलिए कुछ पलों के लिए उस जिस बात की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके एक सुंदर अनुभव में हम सभी यहीं पर अभी डूब जाएं, एक सुंदर एक्सपीरियंस के लिए तैयार हों। कंफर्टेबल बैठें, रिलैक्स हो जाएं, पांव रिलैक्स करें, हाथ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स करें, इजी कंफर्टेबल अलर्ट और एक सुंदर अनुभव के लिए मन को तैयार करें। मन को सब तरफ से समेट लें, प्रेजेंट में आ जाएं। और इस अवेयरनेस में आए कि वो परमात्मा जो भाग्य विधाता है, वरदाता है, वो मेरा है, उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है, वो सुप्रीम लाइट है। जरा देखें मन की आंख से उस प्यारे पिता को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, उस शिव साजन को। देखें, इज जस्ट अ थॉट अवे, उसका मेरे साथ संकल्पों का रिश्ता है। मेरे संकल्प उस तक पहुंचते हैं। सोचा और पहुंचा, इज जस्ट अ थॉट अवे, फील हिज प्रेजेंस। कुछ पलों के लिए इस आवाजों के संसार से परे मन बुद्धि को उस एक सर्वोच्च सत्ता में एकाग्र करें और हृदय को असीम प्यार से भर लें। वो मुझे अंदर बाहर जानता है, मेरा जीवन उसके सामने खुली किताब की तरह है। पर फिर भी कुछ मन में अगर बोझ हो, कोई भारीपन हो, कोई बात खटक रही हो, कोई मन में डिस्टर्बेंस हो, आज इस पल अपने मन के मीत को, परमात्मा को सारा बोझ दे दें और हल्के हो जाएं। छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल लाइट, और बुद्धि को प्लेन कर दें। भगवान अपनी टचिंग्स, अपनी गाइडेंस दे रहा है, उसे कैच करें। अगर कोई टचिंग नहीं भी होती है, टाइम पर जरूर होगी, ये निश्चय रखें। महसूस करें उसकी पवित्र किरणें मुझ पर बरस रही हैं, उन शीतल किरणों का अनुभव करें। जो मुझ आत्मा के दाग धुलते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जो पाना था वो सब कुछ मैंने पा लिया है। ओम शांति शांति।